Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Dakshinamurti Stotram, presented by Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Om. Adi Guru Shankaracharya Virachit दक्षिणामूर्ति स्तोत्र का प्रसंग है। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद् भूतम यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमइदं श्री दक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं प्राङ् निर्विकल्पं पुनः मायाकल्पितदेशकालकलनं वैचित्र्यचित्रीकृतं मायावीव विजृम्भयत्यपि महा योगी वयः स्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणम् सदात्मकमसत् कल्पार्थकम् भासते साक्षात्तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यत्साक्षात्करणात् भवेन्न पुनरः वृत्तिर्भवाम्भो निधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये नानाछिद्रघटोदरस्थितमः दीपप्रवाभास्वरम् ज्ञानम् यस्य तु चक्षुरादिकरण द्वारा बहिस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभात्येतत्समस्तम् जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये देहम् प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलाम् बुद्धिम् च शून्यम् विदुः स्त्रीबालान्धजडोपमास्त्वहमिति भ्रान्ता भृशम्वादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमः व्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशो मायासमाच्छादनात् सन्मात्रः करणोपसंहरणतो यो भूत्सुसुप्तः पुमान् प्रागस्वाप्समिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये वाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमहमित्यन्तः स्फुरन्तम् सदा स्वात्मानम् प्रकटीकरोति भजताम् यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वम् पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामिसम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राद्यात्मना भेदतः स्वप्ने जाग्रति वा यये स पुरुषो मायापरिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये भूरं वांस्य नलो नीलोऽम्बुरमहर् नाथो इमां सोपुमान् इत्यावाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यस्रकं नान्यत् किञ्चन विद्यते विमृशताम् यस्मात् परस्मात् विभो तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदम् यस्मादमुस्मिंस्तवे तेनास्य श्रवणात् तथार्थमननात् ध्यानाच्च सङ्कीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितम् स्यादीश्वरत्वम् स्वतः सिद्धे तत्पुनरस्तदा परिणतम् चैश्वर्यमव्याहतम्। दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में पांचवें श्लोक की व्याख्या चल रही है। देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः स्त्रीबालान्द जडोपमस्त्वहमिति भ्रान्ता वृषंवादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमः व्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये। भ्रांता वृषंवादिनः, संसार में अनेक मतवाद वाले हैं, मतभेद वाले हैं, अनेक वाद प्रसिद्ध है। चार्वाक वाद, देहात्मवादी लोग, प्राणात्मवादी लोग, इंद्रियात्मवादी, चंचल मन को ही आत्मा मानने वाले, मनात्मवादी, बुद्धियात्मवादी और शून्यात्मवादी, ये सब संसार में दर्शन के बारे में, आत्मा के बारे में भ्रांत हैं और उसी के चलते ये कहते हैं कि यही मत ठीक है, यही सिद्धांत ठीक है, इसी सिद्धांत को मानो तो तुम सुखी रहोगे। तो सबसे पहले बताया था देहात्मवादी, इसका खंडन करते हुए सुरेश्वराचार्य जी ने बड़े युक्ति से सबका एक एक का खंडन किया है। देहादीनाम जड़ार्थानाम पाषाण बदनात्मनाम कथम भवेत अहम भाव समावेशम विनेशितुः। यह जड़ादीनाम आदिपद से सभी को ले लेना, जो जड़ पदार्थ हैं, क्योंकि इनका उपादान कारण ही जड़ है और जड़ उपादान कारण का ही परिणाम यह देह, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि, ये सब उसी जड़ उपादान कारण का ही कार्य है, परिणाम है। पाषाणवत अनात्मना, पत्थर की तरह है ये सब, मिट्टी की तरह है, पत्थर की तरह है। पाषाणवत अनात्मना, ऐतरीय उपनिषद में ये प्रसंग आया है। परमात्मा ने अपनी इच्छा से, अपनी संकल्प से, मायावृत्ति के द्वारा अनेक प्रकार के जीव शरीर का निर्माण किया। और सारे जीवों का, जीव शरीरों का निर्माण किया और थोड़े दूर खड़े होकर देखा। ये माया या प्रकृति उपादान कारण से मैंने इन शरीरों को बनाया तो सही है, देखूं कैसा है, क्या करते हैं ये। लेकिन बिल्कुल निश्चेष्ट पत्थर की तरह पड़े रह गए ये लोग। कुशल से कुशल कारीगर यदि बढ़िया से बढ़िया मार्बल का पत्थर लेकर बड़ी कुशलता पूर्वक वह मूर्ति बनाता है, लेकिन वह मूर्ति जहां बनाया जिस रूप में बनाया वहीं वह मौन पड़ा रहता है, निश्चेष्ट पड़ा रहता है। इसी तरह परमात्मा ने इन तमाम जीवों का शरीर निर्माण किया अलग अलग और देखा, जड़ मूर्ति की तरह पड़ा रहा, निश्चेष्ट पड़ा रहा। तब परमात्मा ने यह संकल्प किया, मेरे प्रवेश के बिना यह कैसे चेष्टा कर पाएगा, क्योंकि चैतन्य तो केवल मैं हूं, मेरे अलावा सभी जड़ हैं, और जब तक मैं इनमें आत्मा रूप में प्रवेश नहीं करूंगा तब तक ये कुछ नहीं कर पाएंगे, जड़ के जड़ बने रहेंगे। वाणी बोल नहीं पाएगी, आंख देख नहीं पाएंगे, कान सुन नहीं पाएंगे, जिह्वा चख नहीं पाएगी, नाक सूंघ नहीं पाएगा, हाथ नहीं चल पाएगा, पांव नहीं चल पाएंगे, शरीर में कोई चेष्टा नहीं होगा, प्राण स्पंदित नहीं हो पाएगा। बहुत विचार किया उसके बाद, इसमें मेरा प्रवेश करना बहुत जरूरी है, तभी यह सार्थक होगा। ऐसा निश्चय करके परमात्मा ने इस शरीर में प्रवेश किया। ये ऐतरीय उपनिषद का प्रसंग है, और आश्चर्य की बात है कि परमात्मा के चैतन्य का प्रवेश होते ही ये शरीर पूरा का पूरा चेष्टा करने लग गया, इंद्रियां अपने अपने काम करने लग गए, आंख अपना विषय देखने में समर्थ हो गया, कान अपने विषय शब्द सुनने में समर्थ हो गया, वाणी अपने विषय और शब्द बोलने में समर्थ हो गया, नाक अपने विषय गंध सूंघने में समर्थ हो गया, ये सब स्वतंत्र रूप से अपने अपने कर्म करने में सक्षम हो गए। लेकिन ये तभी ये सक्षम हुए जब वो परमात्मा आत्मा के रूप में प्रवेश हुआ। सुरेश्वराचार्य जी ने इन तमाम मतवाद का खंडन करते हुए निषेध कर दिया कि तुम्हारा जो शरीर है इसको तुम जो आत्मा मान रहे हो इसकी वास्तविकता क्या है, कैसी है, पता है तुम्हें? ये तो जड़ है, पत्थर की तरह है। यदि शरीर से बिना आत्मा का इसमें प्रवेश न होता तो ये तो जड़ का जड़ पड़ा रहता, जैसे मूर्तिकार की मूर्ति पड़े रहता है। और ये आश्चर्य कि परमात्मा में और उस मूर्तिकार में इतना ही अंतर है। परमात्मा यदि उस पत्थर की मूर्ति बनाता तो उसमें बनाने की क्षमता भी है और उसमें आत्मा के रूप में प्रवेश करने की भी क्षमता है, और प्रवेश कर जाता, किया ही है देख लो। और मूर्तिकार में यही एक अड़चन है कि वो बना तो सकता है लेकिन उस मूर्ति में वह आत्म रूप में प्रवेश नहीं कर सकता है। परिणाम है कि चाहे कितने ही सुंदर मूर्ति बनाओ वह जड़ का जड़ पड़ा रहता है, उसमें चेतनता नहीं है। चेतनता आपके भावना से उसमें आरोप करना पड़ता है, तब प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, फिर भी वह जड़ के जड़ रहते हुए भी पत्थरावच्छिन्न चैतन्य आपकी भावना को सुनने में समर्थ होता है, तभी आपकी प्रार्थना फलीभूत होती है। ये प्राण प्रतिष्ठा की विधि है, सामान्य चैतन्य तो हर पत्थर में है ही है। आप प्रश्न कर सकते हो, जब उन पत्थरों को उन मूर्तियों को जड़ ही मानना है तो जड़ का हमारे साथ क्या संबंध है? फिर हम उनकी प्रतिष्ठा करके हम उसकी अर्चना और पूजा आदि क्यों करें? उसके सामने खड़े होकर प्रार्थना क्यों करते हैं महाराज, यदि वह वास्तव में जड़ है? तो विशेष चैतन्य की अभिव्यक्ति न होने पर भी सामान्य चैतन्य उसमें विद्यमान है और प्राण प्रतिष्ठा के विधि से वह सामान्य चैतन्य सक्रिय होता है, आपकी भावनाओं से संबंधित होता है। तब प्राण प्रतिष्ठित मुन विग्रहों में आपाततः देखने में जड़ होने पर भी तदवच्छिन्न चैतन्य वेदांत की प्रक्रिया अनुसार वहां सामान्य चैतन्य विद्यमान है, वही सामान्य चैतन्य आपकी भावनाओं से अनुप्राणित होकर, आपकी भावनाओं से अभिप्रेरित होकर आपकी अभिलषित वरदान देने में समर्थ होता है। देहादीनाम जड़ार्थानाम पाषाणवद अनात्मनाम कथम भवेद अहम भाव समावेशम विनेशितु। उस परब्रह्म परमात्मा के इन जड़ात्मक शरीर के अंदर प्रवेश किए बिना ये जड़ात्मा शरीर में अहम भाव भी नहीं हो सकता है। इसलिए इसमें जो अहमपना है वो भी परमात्मा का ही अनुप्रवेश है। देहस्तावत अयन्नात्मा दृश्यत्वात् जड़वत्वात् ततः। सुरेश्वराचार्य जी ने फिर खंडन कर दिया, देहतावत अनात्मा, ये जो पंचभूतात्मक अन्नमय कोष है, ये देह, देह शब्द का अर्थ ही होता है विकारी, बढ़ने वाला, अन्न से बढ़ता है, बढ़ने वाला। शरीर शब्द का अर्थ ही होता है घटने वाला। देह शब्द का अर्थ बढ़ने वाला, शरीर शब्द का अर्थ घटने वाला। तो घटने वाला और बढ़ने वाला होने के कारण यह आत्मा नहीं हो सकता है। शरीर आत्मा न होने में दो हेतु दिया है। पहला हेतु दिया दृश्यत्वात्, यदि यह शरीर किसी के द्वारा देखा जाता है तो फिर यह आत्मा नहीं हो सकता है। इसीलिए यदि आप इस भरोसे में हैं कि इन आंखों से मैं भगवान को देख लूं, परमात्मा को देख लूं, समय बर्बाद नहीं कर लेना। चर्म चक्षु से भगवान नहीं दिखते, चर्म चक्षु से परमात्मा नहीं दिखता। इसीलिए तो अर्जुन को भगवान के रूप देखने के लिए भी परमात्मा ने अलग दृष्टि दी है। गीता में है कि नहीं ये बात? दिव्यम ददामि ते चक्षुहु, हे अर्जुन तू इस आंखों से मेरे स्वरूप को नहीं देख पाएगा, मेरे स्वरूप को देखना होगा तो तुझे मैं दूसरा ही चक्षु दूंगा। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे रूपमैश्वरम, तब जाके मेरे ये ऐश्वर्य भाव को देख पाएगा, नहीं तो इन चर्म चक्षुओं से तो तू जैसे अपने को देखता वैसे मुझे भी देख लेगा। सभी लोग यही करते हैं। तो दृश्यत्वात्, चर्म चक्षु से जो दिखता है वह दृश्य है, दृश्य जितने भी हैं वह सब अनात्मा है, आत्मा चर्म चक्षु दृश्य नहीं है। गीता के 15वां अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने इस बात का स्पष्ट कर दिया है, विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। चर्म चक्षु के भरोसे पर परमात्मा का दर्शन करने की इच्छा से यदि आप बैठे हो तो समय बर्बाद नहीं कर लेना, इसकी भरोसा नहीं कर लेना। इस चर्म चक्षु से तो तुम्हारा बेटा दिखेगा, पति दिखेगा, पत्नी दिखेगी, मां दिखेगा, बाप दिखेगा, भाई दिखेगा, शत्रु दिखेगा, मित्र दिखेगा, इष्ट दिखेगा, अनिष्ट दिखेगा, परमात्मा नहीं दिखेगा। आज तक दिखाई नहीं किसी को। मां बाप दिखे हैं, भाई बंधु दिखे हैं, बेटा बेटी दिखे हैं, पति पत्नी दिखा है, नौकर मालिक दिखे हैं, गाड़ी पदार्थ घर सब कुछ दिखा है परमात्मा को छोड़कर, बाकी सब दिखा है कि नहीं, सबको दिख रहा है, दिख ही रहा है और दिखेगा ही इसी के माध्यम से, ये दिखेंगे ही इसके माध्यम से, चर्म चक्षु के माध्यम से। दृश्यत्वात् पहला हेतु दिया दृश्य होने के कारण, ये शरीर आत्मा नहीं है, और दृश्य होने के कारण ये शरीर आत्मा नहीं है, जो जो दिखाई नहीं पड़ता है चर्म चक्षु से वो तो आत्मा हो सकता है ना, तो प्राण तो आत्मा हो सकता है, मन तो आत्मा हो सकता है, बुद्धि आत्मा हो सकती है, क्योंकि वह चर्म चक्षु से दिखाई नहीं पड़ते हैं तब वे तो आत्मा हो सकते हैं ना। तो प्राण में, इंद्रियों में, मन में, अंतकरण में अतिव्याप्ति न हो जाए लक्षण, उसको हटाने के लिए कहा जड़त्वतः। दूसरा विशेषण जोड़ दिया क्योंकि जड़ भी है, एक तो दृश्य है दूसरा जड़ है, इसलिए यह आत्मा हो ही नहीं सकता है देह। रूपादिमत्वात् सांसत्वात् भौतिकत्वात् च कुंभवत्। और तीन हेतु दे दिया, ये पांच हेतु से ये शरीर आत्मा नहीं हो सकता, पांच कारणों से शरीर आत्मा नहीं हो सकता। पहला कारण दृश्य है इसलिए यह आत्मा नहीं हो सकता, दूसरा कारण ये जड़ है इसलिए यह आत्मा नहीं हो सकता, तीसरा कारण ये रूपादि मत्वात, ये रूप वाला है, रूपाश्रय है, रूप वाला है, इसलिए गोरा काला मोटा पतला दुबला। सांसत्वात तीसरा हेतु दिया, ये सांस है, अंशांशी भाव है, अवयव अवयवी भाव वाला है, ये तो अनेक अवयवों से बनकर मिलकर बना है, ये एक ही नहीं है, ये अवयवों को मिलकर बना हुआ है। चौथा हेतु दिया सांसत्वात, और पांचवा हेतु दिया भौतिकत्वाच्च। यह पंचीकृत पंचमहाभूतों का सम्मिलित संघात रूप है, ये एक भूत भी इसमें सम्मिलित न हो तो ये का अस्तित्व नहीं रहेगा। भौतिकत्वात् कुंभवत् देह आत्मा न भवती, नाना छिद्र घटोदर स्थित महा, घड़े की तरह है ये, जैसे घड़ा दृश्यत्वात् आत्मा न भवती, घड़ा दिखाई पड़ता है इसीलिए वो आत्मा नहीं होता। कोई भी मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी घड़े को मैं हूं ये नहीं कहेगा, क्योंकि दृश्यत्व यह है तो कहेगा, लेकिन मैं हूं नहीं कहेगा वो। जैसे घड़ा जड़ है, जैसे घड़ा रूपादिवान है कंबुग्रियमान, जैसे घड़ा सांसत्व है अंशांशी भाव वाला है, न्यायिक लोग परमाणु का संघात है ये मानते हैं, या घट कपाल संयोग ही घट है ऐसा मानते हैं, अंशांशी भाव मानते हैं और भौतिक है। इन पांच हेतु के कारण घड़ा मैं नहीं हो सकता है, इसी तरह जो घड़े में पांच हेतु हैं वही पांच हेतु इस घड़े में है। कौन से घड़े में? देह घट में है, इसलिए यह आत्मा तो हो ही नहीं सकता। यदि यह आत्मा हो सकता है तो घड़ा भी आत्मा हो सकता है, कोई आपत्ति नहीं घड़े को आत्मा होने में, लेकिन कोई भी नहीं कहता कि घड़ा आत्मा है, मैं हूं। दूसरी बात से खंडन करते हैं सुरेश्वराचार्य जी, मूर्छा सुप्ति मरणेश्वे पीह देह प्रदृश्यते। मूर्छा में जो व्यक्ति मूर्छित होता है, सुसुप्ति में गहरी निद्रा में गया हुआ अवस्था में, और मरणेशु व्यावहारिक दृष्टि से मृत्यु के अवस्था में, देह प्रदर्श्यते, देह तो दिखता रहता है, जैसा अभी दिख रहा वैसे उस समय भी दिखेगा, मूर्छा में भी शरीर जैसा का वैसा ही दिखेगा, सुषुप्ति में भी शरीर वैसा का वैसा ही दिखेगा, मरण पश्चात भी शरीर वैसा का वैसा ही दिखेगा। ये तीनों अवस्था निश्चेष्टा की अवस्था है, इतने जरूर आप अनुमान कर सकते हो कि मूर्छित अवस्था में व्यक्ति का इंद्रियों के साथ संबंध होता नहीं, सुषुप्ति अवस्था में भी व्यक्ति का इंद्रियों के साथ संबंध होता नहीं, शरीर चेष्टा नहीं करता, मरण पश्चात भी शरीर का चेष्टा नहीं है। इसके बावजूद भी आप ये कह सकते हैं कि मरण पश्चात तो श्वासोच्छ्वास नहीं करता, लेकिन मरने से पहले मूर्छा और सुषुप्ति में तो वह श्वासोच्छ्वास होता है, लेकिन श्वासोच्छ्वास होने पर भी मूर्छा वाला व्यक्ति बाहर के किसी पदार्थ को नहीं जानता, गहरी निद्रा में सोया हुआ व्यक्ति भी बाहर के किसी पदार्थ को नहीं जानता, मरा हुआ मुर्दा भी बाहर के किसी पदार्थ को नहीं जानता, लेकिन प्राण का संचार होता है, इतनी मात्रा से उसको आत्मा नहीं कह देना, इतनी मात्रा से उस शरीर को आत्मा नहीं कह सकते, प्राण का संचार होने मात्र से उसको आत्मा नहीं कहा जा सकता है। तुलसीदास जी ने तो बड़ा बहुत सुंदर युक्ति से कहा है, प्राण संचार मात्र से शरीर आत्मा होता तो जो है लोहार की जो धोखनी होती है ना, उसमें भी प्राण संचार होता है तो उसको भी मान लो आत्मा, प्राण संचार नहीं होता उसमें है? लोहार की जो धोखनी हवा करने वाला होता है ना, चमड़े की, क्या बोलते हैं उसको है? दमन, हाँ, धम्मण, धमनी है। तुलसीदास जी ने तो कहा है प्राण संचरण होने मात्र से ही आत्मा मानते हो तो वो भी तो आत्मा है, लेकिन कभी भी नहीं सुना है कि उसने मैं यहां हूं ऐसा कहता हुआ कभी नहीं सुना है। देहादि व्यतिरिक्तत्वात् तदात्मा न प्रतीयते।